समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिंगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, जाग तुझको दूर जाना। जी हां, अक्सर हम लक्ष्य तो बहुत बड़ा बना लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिशें नहीं करते, बीच में ही हार मान लेते हैं या फिर हार जाते हैं अपने आलस्य से, अपनी छोटी छोटी परेशानियों से, अपनी रोजमर्रा की गलत आदतों से। तो क्यों ना आज हम ये संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी जी जान लगाकर बढ़ते रहेंगे, अपनी कमियों को अपनी नाकामियां नहीं बनने देंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे की सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट नीना।
हेलो आकर्षिता एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 18th of August। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। आकर्षिता
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतुलित और समावेशी विकास के लिए ग्लोबल साउथ के देशों की सहायता के लिए व्यापक वैश्विक विकास समझौते की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों के विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय था सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में खाद्यान्न, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दों में संसाधनों से संबंधित चुनौतियां, संसाधनों तक पहुंच और रोजगार और आर्थिक असमानता के बारे में चिंताएं भी शामिल हैं।
Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a new state-of-the-art maritime rescue coordination center of the Indian Coast Guard, Chennai, today. He will also inaugurate the Marine Pollution Response Center in Chennai and the Coast Guard Air Enclave in Puducherry. The pollution center, located at the Chennai port, represents a pioneering step in marine pollution management. It will also play a crucial role in coordinating responses to marine pollution incidents, particularly oil and chemical spills in the waters adjoining coastal states. The new facilities are poised to play a pivotal role in ensuring robust maritime security and providing efficient responses to emergencies. External Affairs Minister S. Jaishankar will be on an official visit to Kuwait today. During the visit, Dr. Jaishankar will meet his Kuwait counterpart, Abdullah Ali Al-Yahya. He is also expected to call on the leadership of Kuwait. Dr. Jaishankar's visit will enable both sides to review various aspects of bilateral relations between the two countries, including political, trade, investment, energy, security, cultural, counselor, and people-to-people contacts. The two sides will also exchange views on regional and international issues of mutual interest, potentially addressing the evolving geopolitical landscape in the Middle East and South Asia.
भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाया जा सके। संघ की मांग है कि अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था हवाई अड्डे जैसी होनी चाहिए। श्री मोदी को लिखे पत्र में संघ ने कहा कि अस्पताल में दुष्कर्म मामले की जांच निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पीड़ित पक्ष को शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए। संघ ने पीड़िता के परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की है।
Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh reviewed the measures taken by the department towards achieving the goal of a foot and mouth disease FMD free India by 2030 through vaccination. Mr. Singh highlighted that the livestock sector is crucial not only for the Indian economy but also for the livelihoods of farmers. During the meeting yesterday, an action plan has been discussed for making India FMD free by 2030. It was reported that assessments have been conducted to create FMD free zones based on zero surveillance in various states including Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Maharashtra and Gujarat. The declaration as FMD free zones can be prioritized where vaccination is already advanced. This progress will facilitate opportunities for export.
नेपाल के विदेश मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत नेपाल के साथ नियमित वार्ता करता रहता है और श्री देउबा की यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने का अवसर मिलेगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार श्री देउबा विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के साथ बैठकें करेंगे।
A U.S. court has ruled that 26/11 Mumbai terror attacks accused Tahawur Hussain Rana can be sent to India. The U.S. Court of Appeals in California said that the Indo-U.S. extradition treaty permits extradition of Rana. He is wanted in India for his role in 2008 Mumbai terror attacks that killed over 160 people. The ruling came on an appeal filed by 63-year-old Rana against any move to send him to India. He had challenged a magistrate judge's order that categorized him as extraditable to India for his role in the Mumbai attacks. Rana is in a Los Angeles jail over charges linked to 26/11 attacks. Rana is known to be associated with Pakistani-American Lashkar-e-Taiba, LET terrorist David Coleman Headley, one of the main conspirators of the attacks. He is also accused of having links with Pakistan's Inter-Services Intelligence, ISI.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई, बेंगलुरू और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं नीना।
Yes, Akarshita, here's news from Chennai. The 3rd Tamil Nadu International Kite Festival was held at the East Coast Road with various themes. The festival was organized by Global Media Box and the Tamil Nadu Department of Tourism. The festival took place at Thiruvidanthai Beach. One of the kite designs was Jallikattu, which was 15 feet long with a ripstop nylon thread costing 2.5 lakh rupees. 8 countries are participating in this kite festival, including France, Germany, Thailand and Switzerland. More than 250 kites with 40 kite flyers are happy to participate in the game. Last year, the festival attracted 20,000 visitors and this year more than 30,000 are likely to watch the game, which ends on Sunday. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin launched the much-awaited Ati Kadavu Avinashi drinking water scheme that will irrigate 24,468 acres of agricultural land in Erode, Tirupur, Coimbatore districts. It would replenish 1,045 water bodies, including lakes and ponds. This initiative aims at utilizing 1.5 TMC feet of water from the river Bhavani over a period of 70 days, allowing for the distribution of water through 1,065 kilometers of piped lines. Now, some news from Bengaluru. The practice of spraying pesticides and nutrients through drones went a notch up today when 36 drones took to the skies simultaneously in Belagavi district in North Karnataka. The Zilla Panchayat Agriculture Department and Rotary Club had organized the event today in farmers' lands of Hutaragi village. These 36 drones filled with nutrients sprayed them on soybean crops. The campaign was launched by PWD and District in Charge Minister Satish Jharikoli. The Kempegowda International Airport has received the highest level 5 accreditation from Airports Council International ACI for its net zero greenhouse gas emissions. It has now the distinction of being the one and only airport in Asia with level 5 accreditation. The Bangalore International Airport Limited, operated airport in the IT capital of India, achieved 95.6% reduction in scope 1 and 2 greenhouse gas emissions. This was achieved 7 years before the initial target of 2030. The airport runs 100% on renewable electricity, sustainable mobility and green infrastructure. And now moving over to Hyderabad. Union Health and Family Welfare Director General Health Services Professor Dr. Atul Goyal has called on doctors to think of innovative ways to prevent infections without relying solely on vaccines. He made this appeal while formally inaugurating the 14th annual conference of the Clinical Infectious Disease Society, CIDSCON 2024, hosted by the Clinical Infectious Diseases Society, CIDs, at Hyderabad International Convention Center, HICC, at Madhapur in Hyderabad. Dr. Goyal emphasized the need for a shift in focus towards innovative prevention methods rather than depending entirely on vaccinations. He mentioned that while modern medicine has made great strides, there has been a tendency to overlook other dimensions of infection prevention. He argued that vaccination alone should not be viewed as the ultimate solution to infectious diseases. Dr. Goyal reflected on the past, noting that earlier generations managed infections without the extensive use of vaccinations, and he encouraged today's medical community to revisit and innovate such approaches. Now, for Delhi, Mumbai and Kolkata news, over to you, Akash.
जी, तो आइए अब जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की खबरें. दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को राजधानी में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित समस्याओं की निगरानी और इसका जल्द समाधान करने के तत्काल निर्देश दिए हैं. सुश्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो होने से जगह जगह पीने का पानी दूषित हो रहा है और यदि इसे तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन सकता है. वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी में सीवर ओवरफ्लो और दूषित पेयजल की समस्याओं को लेकर जल मंत्री आतिशी द्वारा मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल साबित हुई है. श्री सचदेवा ने कहा कि बीते 10 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बावजूद इसके राजधानी में सीवर ओवरफ्लो या मॉनसून में जलभराव की खराब स्थिति बनी हुई है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया है कि सोमवार से रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त मेट्रो की व्यवस्था की जाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके. इसके अलावा DMRC ने बताया कि स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित करने के साथ ही अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी. DMRC ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे टिकट काउंटरों पर भीड़ लगाने से बचें और QR टिकट खरीदने के लिए DMRC ट्रैवल मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, पेटीएम, वन दिल्ली, अमेजॉन का उपयोग करें. राष्ट्रीय राजधानी में रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं. और अब मुंबई की खबरें. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी नागरिकों से राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने और आगामी त्योहारों और कार्यक्रमों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का आह्वान किया. ये अपील नासिक शहर के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुए तनाव के बाद की गई है. वहीं पुणे जिले के पुरंदर से जीआई रेटेड अंजीर से बना अंजीर का जूस हाल ही में पोलैंड को निर्यात किया गया है। यह भारत से निर्यात किया जाने वाला पहला रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थ है। महाडा का मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ऑनलाइन महाडा ड्रॉ के आवेदकों की सहायता के लिए 19 अगस्त को दोपहर 12 बजे एक लाइव वेबिनार आयोजित कर रहा है। मुंबई भर में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में फ्लैटों की बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया इस महीने की 9 अगस्त को महाडा की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 18 अगस्त को समाज कल्याण अधिकारी ग्रुप बी और अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण अधिकारी ग्रुप बी के लिए संयुक्त स्क्रीनिंग परीक्षा और 25 अगस्त को महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2024 निर्धारित की है। चूंकि आईबीपीएस ने भी इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं निर्धारित की हैं, इसलिए कांग्रेस ने एमपीपीएससी से परीक्षा तिथियों को बदलने का आग्रह किया है। चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। महिला स्वयं सहायता समूह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए 1 करोड़ राखियां भेजेंगे। ये राखियां रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन 19 अगस्त यानी कल को मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। और अब खबरें कोलकाता से। तृणमूल कांग्रेस आजीकर मामले के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी घटना में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने रात्रिपाली में काम करने वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाने का फैसला लिया है। अन्य उपायों के साथ साथ रात्रि साथी नामक एक स्वयंसेवी बल का गठन किया जाएगा। इस बीच राज्य में आजीकर मामले में न्याय के लिए डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। विपक्ष और आम लोग भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। यहां सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की आशंका है। वहीं कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान 25 और 32 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडर स्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद 1 or 2 स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। The minimum temperature is 22 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
In 1800, Fort William College was established at Calcutta. In 1907, Madam Bhikaji Kama addressed the International Socialist Congress at Stuttgart, Germany.
और आज के दिन ही 1868 में फ्रांस के खगोलविद पियरे जेंसीन ने हीलियम की खोज की थी।
In 1951, Indian Institute of Technology was opened in Kharagpur, West Bengal.
1963 में अमेरिका में जेम्स मेरिडिथ मिसिसिपी विश्वविद्यालय में स्नातक करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे।
In 1957, Tilak Raj was appointed the Narcotics Commissioner of India. He headed his office for 4 years till 6 September 1961. In 1990, President R. Venkataraman presented the colors to the Officers Training Academy in recognition of their services to the nation. And in 1997, Shavnak B, India's first genetically engineered vaccine for hepatitis B was launched.
और 2000 में आज के दिन ही इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 2 दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रचा। और 2006 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एचएम इरशाद को विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बरी किया। और अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। खुली किताब की सफहे उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं। वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। जी हां, आज गुलजार का जन्मदिन है। उनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ ही वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार भी हैं। गुलजार ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1961 में बॉलीवुड के महान निर्देशक बिमल रॉय के सहायक के रूप में की थी। काबुलीवाला में उनका लिखा गाना ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान ने उन्हें श्रोताओं की नजरों में उभार दिया था। उन्होंने सुचित्रा सेन के साथ आंधी, रेखा के साथ इजाजत, हेमा मालिनी के साथ खुशबू और किनारा, शबाना आजमी के साथ देवता, शर्मिला टैगोर के साथ मौसम और नमकीन जैसी अविस्मरणीय फिल्में बनाई। उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके लिखे ये गीत।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले,
Gulzar was a master of creative force and would weave words, visuals and emotions into a tapestry of artistic brilliance. As a film director, lyricist and poet, Gulzar's work resonated deeply with audiences, offering poignant reflections on life, love and human experience. His ability to evoke emotions through his craft established him as a true maestro of artistic expression, leaving an indelible mark on Indian cinema and literature. And Akarshita, my personal favorite from my childhood about Gulzar was हमको मन की शक्ति देना।
हाँ, वो हमारे सारे स्कूल्स का प्रेयर्स होता था। हाँ, हाँ, हमको मन की शक्ति देना, और वो ऐसा लगता था कि एकदम मन से लोग गाते
बिल्कुल
थे।
बिल्कुल, और आज भी वो बहुत पावरफुल है। मतलब
हाँ, ये वो जो प्रेयर्स है
ऑल्सो, अगर आप गाते हो आपको बहुत शक्ति मिलती है उस।
और ऐसी लाइनें तो हम गुलजार से ही जो है ले सकते हैं। मतलब ऐसी लाइनें और कोई लिख भी नहीं सकता। जिस तरीके से उनके गाने हैं, उनके जो बोल हैं, और वो उनके जो एक बोल सकते हैं कि मीनिंग्स होती हैं, वो हम और किसी के गाने में नहीं पाते हैं।
दैट्स राइट। In 1900, with the birth of Vijay Lakshmi Pandit, today in history, India gained a trailblazing leader whose influence would extend beyond national boundaries. Her journey from being the sister of Pandit Jawaharlal Nehru to becoming a prominent political figure and diplomat exemplified her commitment to public service and international relations. In 1700, a significant thread was woven with the birth of Bajirao I. This remarkable figure emerged as one of the greatest generals of the Maratha Empire, leaving an indelible imprint on the landscape of Indian warfare.
आज विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जयंती है। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे, जिन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक, समर्थक, संगीत गुरु और गायन कौशल के धनी भक्त हृदय गायक थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों की स्वरलिपियों को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और उनके पुत्र डीवी पलुस्कर जैसे दिग्गज गायक शामिल थे। आइए सुनते हैं उनका ये रामधुन।
राम हरे हरे राम हरे राम हरे भज मदन से दिन प्यारे भज मदन से दिन प्यारे
हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे भज मदन से दिन प्यारे
भज मन निश दिन प्यारे
हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे भज मन
In the midst of a world often shaped by visual cues, the life of Pandit Vishnu Digambar stood as a testament to the triumph of the human spirit over adversity. Despite being blind, he ventured into the realm of music and achieved remarkable milestones, leaving an indelible legacy of melodies that transcended the barriers of sight.
और आज भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीतिका जाखड़ का जन्मदिन है। वे देश की पहली ऐसी महिला पहलवान हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतिका जाखड़ ने महज 13 साल की उम्र में अपने दादा चौधरी अमरचंद जाखड़ से कुश्ती के गुर सीखने शुरू कर दिए थे। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने भारत केसरी का खिताब हासिल किया। वर्ष 2000 में दिल्ली में हुए एक दंगल में उन्होंने देश की पहली भारत केसरी का खिताब जीता था। वे दो बार राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। गीतिका जाखड़ ने 2003 और 2005 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में रजत और 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक भी जीता था।
In the cricketing arena, the birth of Sandeep Patil on this day brought forth a player whose contributions would shape the narrative of the Indian cricket. Daler Singh, born on 18th August 1967, better known as Daler Mehndi, is an Indian singer, songwriter, author and record producer. He has helped to make Bhangra popular worldwide as well as Indian pop music independent of Bollywood music. He is best known for his dance songs, voice, turban and long flowing robes. Magna Sound signed Mehndi for a 3-album contract for 3 years. Bolo Tararara, Mehndi's debut album, sold over 20 million copies. The album established Daler as a pop star, which also won him the Channel V's Best Indian Male Pop Artist Award. Patrick Wayne Swayze, an American actor, dancer, singer and songwriter, was born today in 1952. Gaining fame with appearances in films during 1980s, he became popular for playing tough guys and romantic male leads. Swayze starred in 1987's Dirty Dancing, a low-budget movie planned for only a one-week release, after which it was to go to video. Dirty Dancing's coming-of-age story first became a surprise hit and then achieved enormous international success. It was the first film to sell 1 million copies on video, and as of 2009, it had earned over $215 million worldwide.
Aur ab samay hai.
Have to for me.
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आकर्षिता और नीना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात। नमस्कार।